आज धात्वर्थ निर्णय की अंतिम ये कारिका है, 21वीं कारिका, इसको हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद फिर जो दो प्रकरण और हैं आपकी सिलेबस में, उसमें पढ़ने पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक आ रही है। तो अभी जो हम एक एक शब्द पढ़ करके आपको पढ़ा रहे थे, वो नहीं कह करके केवल मोटा मोटी जो सिद्धांत की बात है वो मैं बताता चलूँगा। तो चलिए फिर अभी तो हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे 21वीं कारिका को। 21वीं कारिका का अवतरण बता रहे हैं कि ननु सिद्धांते बोधकता रूपा शक्ति ही आख्यात शक्ति ग्रहवताम बोधात आवश्यक ही। ऐसा है कि फिर उस चर्चा पर ये आ गए कि भावना जो है वह किसका अर्थ है, क्रिया जो है वह किसका अर्थ है। तो व्याकरण तो कहते हैं कि ये धातु का अर्थ है, लेकिन मीमांसक जो है वो आख्यात का अर्थ मानते हैं। अच्छा, अर्थ जो माना जाता है, आप याद कीजिए मैंने बताया था कि शब्द की शक्ति जिसमें हो, जिस अर्थ में होती है वही अर्थ शब्द का माना जाता है। जैसे अश्व शब्द की शक्ति जो है वह घोड़ा के अर्थ में है, तो अश्व का अर्थ जो है घोड़ा माना जाता है। तो ऐसे ही व्याकरण के मत में धातु की शक्ति जो है भावना अर्थ में होती है, और मीमांसक मत में आख्यात की शक्ति माने तिंग की शक्ति जो है वह भावना अर्थ में होती है। अर्थात तिंग का अर्थ भावना है उनके मत में, और हमारे मत में धातु का अर्थ जो है वह भावना है। तो हम जब धातु सुनते हैं कान के द्वारा तो हमें व्यापार अर्थ का बोध होता है धातु से, और मीमांसक जो है जब तिंग सुनते हैं, आख्यात सुनते हैं कान के द्वारा, तो उनको आख्यात से ही जो है व्यापार का बोध होता है। ये स्थिति है, जो जैसा मानता है। अब देखिए कि कोई जो है राम जी को मानते हैं, तो जब राम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर उनको भगवान दिखाई देता है। जो कृष्ण जी को मानते हैं वो कृष्ण मंदिर में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वहाँ भगवान दिखाई देता है। और जो राम कृष्ण को नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ उनको अल्लाह महसूस होता है। क्रिश्चियन जो है गिरजाघर में जाते हैं तो वहाँ उनको उनका भगवान दिखता है। तो जो मानता है उसको वैसा ही वहाँ पर दिखता है। तो मीमांसक जो है आख्यात का अर्थ भावना मानते हैं, और आख्यात को सुन करके ही उनको बोध भी होता है, शब्द बोध भी होता है। तो फल को देख करके जो है ना कल्पना की जाती है कि ये किसका है। तो मीमांसकों के अनुसार अगर हम विचार करें तो मीमांसकों ने आख्यात को सुन करके भावना अर्थ को समझा, तो फल को देख करके फल यही हुआ उसका कि आख्यात को सुना तो वहाँ पर शब्द बोध फल हुआ, क्या भावना का बोध हुआ। तो इस फल को देख करके हम कल्पना ये करेंगे कि चूंकि आख्यात सुन करके जो है शब्द बोध हो रहा है मीमांसकों को भावना का, इसका मतलब है कि आख्यात का अर्थ ही भावना है, धातु का अर्थ भावना नहीं है। इस प्रसंग को मैंने पहले समझा दिया। अब पंक्ति को देखिए, कहते हैं कि ननु सिद्धांते, सिद्धांते माने मीमांसक सिद्धांते, मीमांसकों के सिद्धांत में बोधकता रूपा शक्ति ही, शक्ति जो होती है वह बोधकता रूपा होती है। ये बोधकता शक्ति तो आप जानते हैं ना, शब्द और अर्थ के बीच में रहने वाला जो साक्षात संबंध है उसको हम शक्ति कहते हैं। लेकिन उस शक्ति का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं कि बोधकता रूपा शक्ति ही, बोधकता ही शक्ति है। अब ये बोधकता क्या है, तो देखिए अर्थ जो है वह होता है बोध्य, और शब्द जो होता है वह होता है बोधक, और बोधक में रहने वाला जो धर्म है उसको कहते हैं बोधकता। तो बोधकस्य धर्म बोधकता, और बोधकता एव शक्ति ही, बोधकता ही जो है वह शब्द और अर्थ की शक्ति कहलाती है। तो कहते हैं कि मीमांसक सिद्धांत, मीमांसकों के सिद्धांत में बोधकता रूपा जो शक्ति है, बोधकता स्वरूप जो शक्ति है, वह आख्यात शक्ति ग्रह बताम, आख्यात में ही जिन्होंने शक्ति मान लिया है भावना अर्थ में, ऐसा ग्रह बताम माने ज्ञान बताम, ग्रह का अर्थ ज्ञान करेंगे तो आख्यात शक्ति ग्रह बताम मतलब आख्यात में ही भावना अर्थ में सकती है, आख्यात में ही भावना अर्थ, आख्यात का ही भावना अर्थ होता है। इस तरह से जो शक्ति ग्रहवान है मीमांसक लोग, उनको बोधात, उनको बोध होता है। इसलिए आवश्यक ही, आवश्यक ही मतलब आख्यात में ही जो है शक्ति माननी चाहिए भावना अर्थ वाली। इति धातोरेव भावना वाच्या न आख्यातस्य इति कथम निर्णय। तो शब्द बोध मीमांसकों को जो होता है उसको देख करके हम ये कैसे कहें कि नहीं जी, भावना जो है धातु का वाच्य है, अर्थ है, आख्यात का अर्थ नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मीमांसकों को तो धातु से बोध होता नहीं है, मीमांसकों को तो आख्यात से ही बोध होता है। तो बोध को देख करके हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि आख्यात का ही अर्थ भावना है, धातु का अर्थ भावना नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं कि धातु का अर्थ भावना है, आख्यात का भावना अर्थ है नहीं है, तो कथम निर्णय, फिर ये निर्णय कैसे करेंगे? क्योंकि किस शब्द का कौन सा अर्थ है ये निर्णय होता है बोध के आधार पर, शब्द बोध के आधार पर। जिस शब्द को सुनने से जो जिस अर्थ का बोध हो वही जो है अर्थ उस शब्द का माना जाता है, आप जानते भी हैं। तो मीमांसकों को आख्यात सुनकर के बोध हो रहा है भावना का, तो आख्यात का ही अर्थ मानना चाहिए ना। धातु का भावना अर्थ कैसे मानते हैं, ये कैसे आप निर्णय करते हैं? इति आशंकाम समाधत्ते, इस तरह की जो आशंका पूर्व पक्षी ने की उसका समाधत्ते मान उसका समाधान करते हैं 21वीं कारिका के द्वारा। अब 21वीं कारिका क्या है? कहते हैं कि भेद्य भेदक संबंध उपाधि भेद निबंधनम साधुत्वम तदभावेपि बोधो नेह निवार्यते। यहाँ पर भेद्य शब्द है और भेदक शब्द है। आगे कोंडभट्ट भी कहते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन मैं सामान्यतया अर्थ बता देता हूँ। भेद्य का मतलब होता है विशेष्य और भेदक का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। और विशेष से विशेषण भाव जो संबंध है उसी को यहाँ पर कहा गया भेद्य भेदक संबंध। फिर से कहता हूँ, भेद्य हो गया विशेष्य, भेदक हो गया विशेषण, और भेद्य भेदक संबंध का मतलब हो गया विशेष विशेषण भाव संबंध। तो विशेष विशेषण भाव संबंध जो है उस संबंध में जो उपाधि भेद होता है, उपाधि कहते हैं धर्म को और भेद माने विशेष, धर्म विशेष। तो विशेष विशेषण भाव संबंध का जो उपाधि भेद होता है माने धर्म विशेष होता है, माने अलग अलग टाइप का विशेष विशेषण भाव होता है। घट शब्द और घट अर्थ में अलग टाइप का होगा विशेष विशेषण भाव संबंध, पट शब्द और पट अर्थ में अलग टाइप का होगा विशेष विशेषण भाव संबंध, धातु और भावना इसमें अलग टाइप का विशेष विशेषण भाव संबंध होगा। तो ये जो अलग अलग टाइप का भेद भेदक संबंध होता है अर्थात विशेष विशेषण भाव संबंध होता है, उपाधि भेद होता है माने धर्म भेद होता है, धर्म विशेष होता है भेद भेदक संबंध का, तन निबंधन वही निबंधन होता है, निबंधन होता है माने निमित्त बनता है, कारण बनता है। किसमें कारण बनता है? तो साधुत्व, साधुत्व में कारण बनता है, माने यह शब्द साधु है, यह शब्द और यह अर्थ साधु है अथवा असाधु है, ये इसमें निबंधन कौन होता है, इसमें कारण कौन होता है? तो भेद भेदक संबंध का जो उपाधि भेद है अर्थात विशेष विशेषण भाव संबंध का जो विशेष धर्म विशेष है, वह धर्म विशेष ही साधुत्व के मानने और न मानने में कारण होता है। आगे कहते हैं तत् अभावे भी बोधो नेह निवार्यते, मान तत् अभावे भी मान साधुत्व अभावे भी, तत् से पकड़ना है साधुत्व को, कि साधुत्व का अभाव भी अगर किसी शब्द में हो तो बोधो न इह निवार्यते। इह माने व्याकरण शास्त्र माने शब्द बोध जो है फिर भी वहाँ पर होता ही होता है, साधबोध का निवारण नहीं होता बल्कि साधबोध होता है। तात्पर्य ये निकला कि अगर साधु शब्द है तब तो वहाँ पर शब्द बोध होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शब्द साधु नहीं भी है तो भी शब्द बोध होता ही होता है। आप देखते हैं कि बच्चा जब बोलता है तुतलाता है, साधु शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी बात को सुन करके हम समझ जाते हैं ना कि ये क्या कह रहा है। तो यद्यपि वह असाधु बोलता है फिर भी बोध तो हो रहा है ना, इसीलिए कहा कि बोधो नेह निवार्यते, माने साधुत्व के अभाव में भी शब्द बोध का निवारण नहीं होता, अर्थात शब्द बोध वहाँ पर होता ही होता है। तो इस तरह से आपने जो आशंका की थी कि मीमांसकों को आख्यात सुन करके जो है भावना अर्थ का बोध होता है, इसीलिए आपको मान लेना चाहिए कि आख्यात की शक्ति होती है भावना अर्थ में, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साधुत्व अलग चीज है, शब्द बोध अलग चीज है, दोनों को मिक्सअप करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात आगे बताएंगे कि भेद्यम विशेष्यम, भेद्यम माने हो गया विशेष्य, भेदकम विशेषणम, भेदकम हो गया विशेषण, तयो यह संबंध है, माने भेद्य और भेदक का जो संबंध है विशेष विशेषण भाव संबंध, तस्य यो भेद है, माने उस विशेष विशेषण भाव संबंध का जो भेद है, भेद माने विशेष है, क्या विशेष है, धर्म विशेष, उपाधि विशेष, उपाधि माने धर्म होता है, मैंने बताया था, वह जो धर्म विशेष है तन निबंधनम साधुत्वम, उस धर्म विशेष के कारण ही जो है, उस धर्म विशेष के निबंधन से ही जो है साधुत्व होता है, माने कौन साधु किस शब्द में साधुत्व है किस शब्द में साधुत्व नहीं है, इसका निर्णय भेद भेदक संबंध भेद के कारण होता है। भेद भेदक संबंध उपाधि भेद निबंधनम साधुत्वम, ये जो कारिका में कहा उसी का इसने यहाँ पर अर्थ बताया। आगे और विवेचना करते हैं, कहते हैं कि अयम अर्थ, ताकि यहाँ पर ये तात्पर्य है, ये भाव है क्या, तो व्याकरण स्मृति ही, व्याकरण शास्त्र को व्याकरण स्मृति भी कहा जाता है, जैसे श्रुति और स्मृति होती है ना, तो श्रुति तो प्रमुख है लेकिन स्मृति को भी जो है बहुत आदर भाव से देखते हैं, ऐसे ही व्याकरण शास्त्र को भी स्मृति कहा जाता है, इसको भी आदर भाव से देखा जाता है। इसी तो व्याकरण स्मृति ही, व्याकरण स्मृति जो है वो क्या करती है, तो शब्द साधुत्व परा, वो शब्द साधुत्व परा होती है व्याकरण स्मृति, परा माने बोधिका, शब्द साधुत्व की बोधिका होती है, माने अयम शब्द साधु, अयम शब्द साधु, इस तरह से व्याकरण स्मृति हमें बताती है, ठीक है, माने कौन सा शब्द साधु है ये बताने का काम किसका है, व्याकरण स्मृति का ये काम है, ये मीमांसकों का काम नहीं है, ये न्यायिकों का काम नहीं है कि ये शब्द साधु है ये बता दे, ये केवल बताने का अधिकार जो है वो व्याकरण स्मृति को ही है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं पंक्ति में चलूँगा। ये ऐसा है कि साधुत्व और सक्तत्व, ये दो शब्द थोड़ा पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। साधुत्व मतलब साधु शब्द में रहने वाला जो त्व यानी धर्म, उसको हम साधुत्व कहते हैं, और सक्तत्व किसको कहते हैं, तो शक्ति जिसमें रहे, शक्ति जिस शब्द में रहे उस शब्द को हम कहेंगे सक्त, और सक्त में जो धर्म रहता है उसको हम कहते हैं सक्तत्व। सक्तत्व का अगर एक दूसरे शब्द से अर्थ करना चाहें तो हम कह सकते हैं बोधकत्व, सक्तत्व अर्थात बोधकत्व, और साधुत्व, अब देखिए साधु कौन होता है, शब्द होता है, और सक्त कौन होता है, वह भी शब्द होता है, सक्त माने बोधक मैंने बताया, क्योंकि जो सक्त होगा वही बोधक होगा, सक्त होगा माने जिसमें शक्ति रहेगी वही तो बोध कराएगा, तो साधुत्व और सक्तत्व इन दोनों का अर्थ आपने समझा, साधु भी शब्द है सक्त भी शब्द है, साधु में रहने वाला धर्म साधुत्व कहलाया, सक्त में रहने वाला धर्म सक्तत्व कहलाया। मीमांसकों ने क्या किया है, साधुत्व और सक्तत्व को एक मान लिया है, उनका कहना है कि जो साधु है वही सक्त है, जो साधु नहीं है वह सक्त नहीं है, ऐसा मीमांसकों ने माना हुआ है। उनका भाव ये है कहने का मीमांसकों का कि जो शब्द साधु होता है वही बोधक होता है, जो शब्द साधु नहीं होता है वह बोधक नहीं होता है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए वो कहते हैं कि साधुत्वम सक्तत्वम च एकमेव, कि साधुत्व और सक्तत्व एक ही है, किंतु वैयाकरणों के यहाँ ये दोनों चीजें अलग है, साधुत्व अलग है और सक्तत्व अलग है। जो साधु होता है वह बोधक तो होता है, लेकिन वह जो सक्त होता है वह बोधक होवे और वह साधु होवे ये जरूरी नहीं है। माने साधु शब्द बोधक होते हैं, लेकिन सारे के सारे सक्त जो शब्द हैं, बोधक शब्द जो हैं, वो साधु नहीं होते हैं। इस तो व्याकरण के मत में क्या हो गया, साधुत्व तो अलग हो गया और सक्तत्व तो अलग हो गया, साधुत्व और बोधकत्व अलग हो गया, लेकिन मीमांसकों के यहाँ अलग नहीं है, उनके यहाँ दोनों जो है एक ही है। अब इस भूमिका को जब आप समझ गए हैं, फिर हम आगे जो है पंक्ति में इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो कहा था कि व्याकरण स्मृति ही शब्द साधुत्व परा, व्याकरण स्मृति जो है वो शब्द साधुत्व परक होती है, माने शब्द साधुत्व का की प्रतिपादिका होती है, बोधिका होती है। तत्रैव उसी साधुत्व में अवच्छेदकतया कल्प्यमान धर्मस्य शक्तित्वम्, उसी साधुत्व में अवच्छेदक के रूप में, अवच्छेदक मतलब पृथक कारक के रूप में कल्प्यमान जो धर्म है उस धर्म को ही शक्तित्वम वदताम मीमांसका नाम, उसी धर्म को शक्ति जो है मीमांसक लोग मानते हैं। अर्थात साधुत्व और शक्तत्व इन दोनों को एक ही मानते हैं। तो क्या हो गया, मीमांसका नाम पुनः शक्तत्वम साधुत्वम इति एकमेव, मीमांसकों के मत में शक्तत्व और साधुत्व जो है वह दोनों एक ही है। अब थोड़ा यहाँ पर और अगर पंक्ति को समझना चाहें तो इन्होंने कहा ना तत्रैव अवच्छेदकतया, तो तत्रैव माने साधुत्वे एव, तो साधुत्व में ही जो है अवच्छेदक के रूप में कल्प्यमान धर्म, तो साधुत्व में अवच्छेदक के रूप में कल्प्यमान धर्म कौन होगा, सक्तत्व धर्म होगा। ठीक है, वह जो सक्तत्व धर्म है उसी को शक्तित्वम बदताम, उसी सक्तत्व को ही शक्तित्व कह करके, बदताम कह करके मीमांसका नाम पुनः सक्तत्वम साधुत्वम एकमेव, मीमांसकों के मत में ये दोनों एक ही हैं सक्तत्व और साधुत्व। इति तदरीत्या विचारे, इसलिए उनकी रीति से अगर विचार करें, मीमांसकों की रीति से अगर विचार करें तो साधुत्व निर्णय एवं शक्ति निर्णय उच्यते, साधुत्व का निर्णय ही जो है उनके यहाँ शक्ति निर्णय कहलाता है। अर्थात जो सक्त होता है वही साधु होता है, जो साधु होता है वही सक्त होता है मीमांसकों के यहाँ। अतिरिक्त शक्तिवादेपि आख्यातानाम असाधुता भावनायाम स्यादेव, और इसके अतिरिक्त जो मानते हैं, जैसे हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि सक्तत्व अलग मानते हैं और साधुत्व अलग मानते हैं, तो हमारी मान्यता के अनुसार यही है अतिरिक्त शक्तिवाद। तो हमारी मान्यता के अनुसार जो हम शक्ति को अलग मानते हैं और साधुत्व को अलग मानते हैं वो हो गया अतिरिक्त शक्तिवाद। अतिरिक्त माने अलग, तो अतिरिक्त शक्तिवाद में क्या होगा कि आख्याता नाम असाधु, अगर आख्यात का अर्थ हम भावना करेंगे तो असाधुता आ जाएगी, वह आख्यात जो है असाधु कहलाने लगेगा। तो अतिरिक्त शक्तिवाद भी आख्याता नाम असाधुता भावनायाम स्यादेव, अतिरिक्त शक्तिवाद में तो आख्यात का में असाधुता आने लगेगी यदि हम भावना अर्थ मानेंगे। इन्होंने जो आशंका की थी ना कि आख्यात का ही अर्थ भावना मान लीजिए, उसका ये जवाब है कि अगर हम भावना अर्थ मानेंगे तो ये असाधु कहलाएगा, और असाधु कहलाएगा तो असक्त मीमांसकों की रीति से तो वो असक्त है, फिर वह बोधक नहीं होगा, वह भावना का बोध नहीं कराएगा। तो आज का पाठ यहीं स्थगित करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।